بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔ ریڈیو تہران کے سبھی آدرنیہ شروتاؤں کی سیوا میں حسن عباس اور ساتھیوں کا سلام پہنچے۔ شروتاؤ صدا کی بھانتی آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم پویتر قرآن مجید کی تلاوت اور انواد سے کریں گے۔ آج آپ پویتر قرآن مجید کے سورہ معارج کی 19 سے لے کر 29 آیتوں تک کی تلاوت اور انواد سنیں گے۔ قاری ہیں شری عبد الباسط۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ نسندیہ منش بڑا لوبھی ہے، جب اسے پیڑا اور کشتی ہوتی ہے تو چیخ پکار کرنے لگتا ہے، اور جب اسے دھن سمپتی مل جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے، سوائے ان واستوک نمازیوں کے کہ جو سدیو نماز میں اپنی آیو بتاتے ہیں اور جن کی سمپتی میں ایک اسپشٹ ادھیکار نردھارت ہوتا ہے۔ مانگنے والے دردروں اور نہ مانگنے والے ونچتوں کے لیے، اور جو لوگ پرلے کے دن کی پشٹی کرنے والے ہیں، اور جو اپنے پالنہار کے دنڈ سے ڈرنے والے ہیں، कि उनके पालनहार के दंड से कोई भी बचने वाला नहीं है और जो अपने आप को व्यभिचार से बचाते हैं।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9620 किलोहर्ट्ज पर सुन रहे हैं। आज शुक्रवार है, बेहमन की 28, रजब की 26 और फरवरी की 17 तारीख। इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आप सुनेंगे विश्व समाचार, उसके बाद राजनीति की चर्चा, उसके बाद हम आपको एक विशेष कार्यक्रम सुनवाएंगे और अंतिम कार्यक्रम होगा पत्र संसार। तो दोस्तों, ताज़ा और विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट देखते रहिए। वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। आप सैयद मीसम से विश्व समाचार सुनिए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। तेहरान के इमाम जुमा ने कहा है कि सीरिया में भूकंप एक मानवीय त्रासदी है। अमेरिका और यूरोप इस इम्तहान में फेल हो गई है। ईरान ने अमेरिका और फारस खाड़ी सहयोग परिषद की संयुक्त विज्ञप्ति को खारिज कर दिया है। कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़े घोटाले के बाद क्या मोदी सरकार कमजोर हो रही है? राजस्थान के दो मुस्लिम युवकों को हरियाणा में बजरंग दल के गुंडों ने गाड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला है। अब आप विस्तार से विश्व समाचार सुनिए। तेहरान के इमाम जुमा मोहम्मद जवाद हाज अली अकबरी ने सीरिया में आए भूकंप के पीड़ितों को लेकर पश्चिमी देशों के रवैये की कड़ी आलोचना की है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें अब तक करीब 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के खुतबों में हाज अली अकबरी ने कहा कि दोनों देशों में आने वाला ये भूकंप एक बड़ी मानवीय त्रासदी है, लेकिन विश्व समुदाय इस इम्तहान में नाकाम हो चुका है। उनका कहना था कि ईरान ने तुर्की और सीरिया में मानवीय सहायता और सहायता कर्मी भेजे हैं और तेहरान को उम्मीद है कि क्षेत्रीय देशों के समर्थन से तुर्क और सीरियाई पीड़ितों के दर्द और दुखों को कम किया जा सकेगा। तेहरान के इमाम जुमा का कहना था कि इस त्रासदी से ये भी स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका और यूरोप का नैतिक पतन हो चुका है और उन्होंने सीरियाई पीड़ितों के लिए अपनी गंदी सोच को उजागर कर दिया है। ईरान के राष्ट्रपति की चीन यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि इस यात्रा का न सिर्फ दोनों देशों के संबंधों पर बल्कि क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर प्रभाव पड़ेगा, जिसे अभी से देखा जा सकता है। ईरान और चीन ने हालिया वर्षों में आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा क्षेत्र में अपने संबंधों को रणनीतिक स्तर पर मजबूत किया है। ईरान ने अमेरिका और फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद की संयुक्त विज्ञप्ति को रद्द कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ईरान के बारे में अमेरिका और फारस खाड़ी सहकारिता परिषद की संयुक्त विज्ञप्ति को रद्द करते हुए कहा कि ये विज्ञप्ति क्षेत्र के देशों के बीच फूट डालने की अमेरिकी नीति के परिप्रेक्ष्य में जारी की गई है। अमेरिका और फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद के सदस्य देशों ने गुरुवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाज में संयुक्त बैठक की समाप्ति के बाद एक विज्ञप्ति जारी की और ईरान के खिलाफ निराधार आरोपों को दोहराया। इस विज्ञप्ति में अमेरिका और फारस खाड़ी की सहकारिता परिषद के सदस्य देशों ने शांतिपूर्ण परमाणु गतिविधियों के संबंध में ईरान की प्रगति पर चिंता जताई और तेहरान से मांग की कि वो परमाणु ऊर्जा की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी IAEA के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने गत रात्रि तेहरान के खिलाफ घिसे पिटे आरोपों को रद्द करते हुए कहा कि अमेरिका की ओर से क्षेत्रीय देशों के हाथों अरबों डॉलर के हथियारों की बिक्री, फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ ज़ायोन शासन का पूर्ण समर्थन, कई वर्षों से यमनी राष्ट्र के खिलाफ जारी जंग में अमेरिकी समर्थन और पश्चिम एशिया और फारस की खाड़ी की घटनाएं अमेरिका की विनाशकारी नीतियों का परिणाम है। अमेरिका के एक बड़े कारोबारी जॉर्ज सोरोस ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी के रिश्तों और अदानी समूह की धांधलियों को मोदी सरकार द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर तीखी टिप्पणी की है। यूं तो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी मोदी और अदानी के रिश्तों को लेकर सवाल पूछते रहे हैं और कई पत्रकार इस पर लेख भी लिख चुके हैं, लेकिन ये मुद्दा उस समय गर्मा गया जब हाल ही में हिंडनबर्ग की खोजी रिपोर्ट में अदानी समूह के कारोबार को कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा धोखा करार दिया गया। इस बीच सोरोस ने भी इस मुद्दे पर पीएम नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवालिया निशान लगाया है। उन्होंने कहा कि मोदी को विपक्ष द्वारा संसद में उठाए गए सवालों के जवाब के साथ विदेशी निवेशकों को भी जवाब देना होगा। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में सोरोस ने कहा कि अदानी का मुद्दा भारत की फेडरल सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा। जॉर्ज सोरोस ने उम्मीद जताई कि इससे भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। सोरोस द्वारा मोदी सरकार की आलोचना के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन पर निशाना साधा है। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश हो रही है। भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि मोदी से जुड़ा अदानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरोस से कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के गौरक्षकों ने राजस्थान के भरतपुर जिले के घाट मीघा गांव के दो मुस्लिम युवकों का अपहरण किया और उन्हें उनकी गाड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला। सूत्रों का कहना है कि हरियाणा के भिवानी जिले में बजरंग दल के चरमपंथी कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवकों को पहले मारा पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने फिर से पीड़ितों को हथियारों के हवाले कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उन्हें गाड़ी समेत जिंदा जलाकर मार डाला। परिजनों का कहना है कि बजरंग दल के गुंडों ने युवकों का अपहरण किया और उसके बाद जिंदा जलाकर उनकी हत्या कर दी। हरियाणा के अलग अलग जगह के रहने वाले 5 युवकों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने परिजनों से शवों की पहचान कराने और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया है। पहले तो परिजनों ने शवों को दफनाने से इनकार कर दिया था। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक जुनैद और नासिर अपनी हरियाणा नंबर गाड़ी से निजी काम से बाहर गए हुए थे। पीड़ितों के एक चचेरे भाई इस्माइल का कहना है कि जब नासिर और जुनैद वापस नहीं लौटे तो उन्होंने 15 फरवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। 15 फरवरी की सुबह 9 बजे एक दुकान पर कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि 2 युवकों को 8-10 लोगों ने बुरी तरह पीटा है और दोनों को गंभीर हालत में गाड़ी में डालकर ले गए हैं। इस्माइल ने आगे कहा, वहीं मौजूद लोगों ने हमें बताया कि पीटने और अपहरण करने वाले बजरंग दल के लोग थे, हमें उनके नाम भी बताए गए। हरियाणा और राजस्थान से जुड़ी इस घटना पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। پاکستان میں کھانے پینے اور روزمرہ میں استعمال ہونے والی چیزوں کے داموں میں بھاری اچھال درج کیا جا رہا ہے. تازہ آنکڑوں کے مطابق پاکستان میں ایک کلو گرام چائے کی قیمت 1700 جبکہ ایک کلو آٹے کی قیمت بڑھ کر 125 روپے کے پار چلی گئی ہے. پاکستان بہت ہی گمبھیر آرتھک سنکٹ کا سامنا کر رہا ہے اور اس دیش میں آٹا دال اور کھانے کے تیل جیسی چیزوں کی قیمتیں کافی بڑھ گئی ہیں. پاکستان کے کراچی شہر کے بیچوں بیچ مہارانی بازار میں کرانہ کی دکان چلا رہے زاہد نے بتایا کہ پچھلے 6 مہینے کے دوران 10 کلو گرام آٹے کی قیمت 450 روپے بڑھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہلے 10 کلو آٹے کی قیمت 800 روپے ہوا کرتی تھی جو اب بڑھ کر 1250 روپے ہو گئی ہے. اسی طرح 1 لیٹر کھانا پکانے کے تیل کی قیمت پہلے 380 روپے ہوا کرتی تھی جو اب 620 روپے ہو گئی ہے. پاکستان میں 1 کلو گرام چنے کی دال کی قیمت 430 روپے ہو چکی ہے. وہیں 1 کلو گرام دال میش جو پہلے 320 روپے کی تھی اب 400 سے ادھک پر مل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی چائے پتی پہلے پرتی کلو گرام 1400 روپے تھی, اب یہ بڑھ کر 1700 روپے سے بھی زیادہ میں مل رہی ہے. لبنان کے اسلامی پرتیرودھ آندولن حزب اللہ کے مہا سچیو نے امریکی ادھیکاریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہم تمہیں ایسی جگہ چوٹ پہنچائیں گے کہ کرا بھی نہیں سکو گے. سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ امریکیوں کو جان لینا چاہیے کہ اگر تم لبنان میں اراجکتا اتپن کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں ایسی جگہ چوٹ پہنچائیں گے جہاں تمہیں درد ہوگا, اور اگر ایسا ہوا تو تمہارے لاڈلے اسرائیل کے ساتھ جنگ کریں گے. اسی کے ساتھ سماچار سماپت ہوئے.
یہ تہران ہے اسلامی گنتانت ایران کی آواز.
راجنیتک چرچا.
دوستو, راجنیتک چرچا کے ساتھ اپستھت ہیں قائم رضوی کا سلام سویکار کیجیے. ایران کی پرتیرکشا شکتی سے دشمنوں میں بھے, طالبان سے سمگر سرکار کے گٹھن کی مانگ اور بھارت نینتت کشمیر کی ورتمان استھتی, ان مدوں پر دوستو ہم کارکرم میں وستار سے چرچا کریں گے. ایران پر یدھ تھوپ کر اس کو سینیہ درشٹی سے کمزور کرنے کے پریاسوں کے باوجود آج ایران کی سینیہ شمتا سے شتروؤں میں گھبراہٹ دکھائی دے رہی ہے. ایک سمیکشا کے ساتھ اپستھت ہے محمد مہدی.
اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد والے ورشوں میں پرتیرکشا کے چھیتر میں ایران نے جو پرگتی کی ہے اس سے شتروؤں میں بھے اور کرودھ پایا جاتا ہے. وشو کے وبھن دیشوں کی پرتیرکشا شکتی کی سرکشا اور اس کو وکست کرنے کی شیلی الگ الگ ہے. ایران جیسا دیش جس کی اسٹریٹجک پوزیشن ہو اور جس کو سدیو ہی ودیشی شتروؤں کی دھمکیوں کا سامنا ہو, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی پرتیرکشا شکتی کو مضبوط بنائے اور ساتھ ہی اس کو اپگریڈ بھی کرتا رہے. وبھن سنکٹوں, کچھ دیشوں کی اچھمتاؤں اور ودیشی ہستکشیپ کے کارن پشچم ایشیا ایسا چھیتر بن چکا ہے جہاں پر ہر سمے خطرے منہ بائے کھڑے ہیں. ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کے ساتھ ہی امریکہ سہت ایران کے شتروؤں کا یہ پریاس رہا ہے کہ وہ وبھن مارگوں سے اس دیش پر دباؤ بنائے رکھیں, جس میں سینیہ ہستکشیپ بھی شامل ہے. اسی ادیش سے انہوں نے عراق کے تاناشاہ صدام کو ایران پر حملے کے لیے اکسایا, جس کے پریڑام میں ایران پر تھوپا گیا 8 ورشیہ یدھ کا سلسلہ جاری رہا۔ حالانکہ دشمنوں کی سوچ یہ تھی کہ ایران کے ورد یدھ چھیڑ کر اس دیش کو کمزور کر دیا جائے، جبکہ پریڑام اس کے وپریت سامنے آئے۔ ایران پر تھوپے گئے یدھ نے اسلامی گنتنتر ایران کو اپنی پرترکشا شکتی کو ادھک سے ادھک مضبوط کرنے کے لیے کٹبدھ کر دیا۔ اس کا پریڑام یہ نکلا کہ آج ایران میزائل، ڈرون، راڈار اور آدھنک تکنیک کے چھیتر میں بہت آگے نکل گیا۔ ورتمان سمے میں ایران کی پرترکشا شکتی اس استر پر پہنچ چکی ہے کہ وہ ہر پرکار کی سرکشا چنوتیوں کا سامنا کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ ایران دوارا اپنی پرترکشا شکتی کو مضبوط کرنے کا دوسرا کارن یہ ہے کہ اویدھ زانوی شاسن جیسے ایران کے شتر اور اس کے کچھ پرتسپردھی اپنی رکشا شکتی کو بڑھانے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ ادھارن سوروپ ایس آئی PRI नामक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अनुसार जानी शासन ने अपनी रक्षा शक्ति को मजबूत करने के लिए सन 2021 में 25 अरब डॉलर खर्च किए थे। ये राशि ईरान के रक्षा बजट का लगभग 4 बराबर है। इसी बीच सऊदी अरब ने अपनी प्रतिरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 55 अरब डॉलर खर्च किए, जो ईरान के रक्षा बजट का लगभग 8 गुना है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पश्चिम एशिया में ईरान वो देश है जिसने अपनी रक्षा पर सबसे कम पैसा खर्च किया है। हालांकि ईरान के शत्रु इसी मुद्दे को बढ़ा चढ़ाकर इसे ایرانوفوبیا کے روپ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اس کا مکھیہ کارن یہ ہے کہ وہ ایران کی شکتی کو اپنے وستاروادی کاریوں کے مارگ میں بادھا کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات پوری طرح سے اسپشٹ ہے کہ ورتمان سمے میں راشٹریہ پرترکشا شکتی راشٹریہ سمپربھتا کی رکشا کا ایک مہتوپورن کارک بن چکی ہے۔ اس سندربھ میں اسلامی کرانت کے سروچ نیتا کہتے ہیں کہ وہ دیش جس کے اتنے ادھک دشمن ہوں اس کو اپنے راشٹر کی سرکشا کے پرتی سچیت رہنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہم نے پرترکشا کی اور وشیش دھیان دیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کہتے ہیں کہ پوتر قرآن کے آدیش کے آدھار پر بھوش میں بھی ہم اس چھیتر میں جتنا پریاس کر سکتے ہیں کرتے رہیں گے۔
پورے وشو کی آج بھی طالبان سے یہ مانگ ہے کہ وہ ایسی سرکار کا گٹھن کرے جس میں افغانستان کے ہر ورگ کے لوگ شامل ہوں۔ پیش ہے اس بارے میں ایک انیہ سمیکشا جسے لے کر اپستھت ہیں سید میسم۔
ایران اور چین نے طالبان سے مانگ کی ہے کہ وہ افغانستان میں ایک سمگر سرکار کا گٹھن کریں۔ اسلامی گڑتنز ایران اور چین کے راشپتیوں نے ایک سنیکت گھوشنا پتر میں طالبان سے یہ مانگ کی ہے کہ افغانستان کے سبھی گٹوں اور ورگوں کی سمیلتی سے اس دیش میں ایک ویاپک سرکار کا گٹھن کیا جائے۔ راشپتی سید ابراہیم رئیسی کی چین یاترا کے دوران جاری ہونے والے اس سنیکت بیان میں ایران اور چین کی اور سے افغانستان کی جنتا کی سہایتا اور اس دیش کے ساتھ سہکاریتا کرنے پر بھی سہمتی بنی۔ پچھلے کئی ورشوں سے افغانستان وبھن پرکار کی سمسیاؤں سے جوجھ رہا ہے۔ اس دیش کو سب سے ادھک آرتھک سنکٹ کا سامنا ہے۔ افغانستان کی اس سمسیا کا سمادھان کھیتری ایوم انتراشٹری سہیوگ کے بنا سمبھو نہیں ہے۔ ورتمان سمے کی سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ اس سمے سب کا دھیان یوکرین سنکٹ کی اور لگا ہوا ہے۔ ایسے میں افغانستان کو لگ بھگ بھلا دیا گیا ہے۔ پشچم وشیش کر امریکہ کی اور سے یوکرین کی ویاپک استر پر سہایتا کی جا رہی ہے اور افغانستان کی جنتا کو بھلا دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کے ورتمان سنکٹ کا مکھیہ کارک امریکہ ہی ہے۔ اسی نے اس دیش پر پرتیبندھ لگا کر افغانستان کی جنتا کی ہر پرکار کی سہایتا کے مارگ کو روک دیا ہے۔ ایسے میں ایران اور چین جیسے دیش افغانستان کے سندربھ میں الیکھنیہ بھومیکا نبھا سکتے ہیں۔ اس سندربھ میں افغانستان کے ایک ٹیکہ کار محمد انور کہتے ہیں کہ ایران ہر کھیتر میں افغانستان کی جنتا کے لیے آدرش ہے۔ دونوں دیشوں کی سبھیتاؤں میں سمانتائیں پائی جاتی ہیں۔ ہمیں آشا ہے کہ ایران کے پریاس افغانستان کی جنتا کی سمسیاؤں کے سمادھان میں پربھاوی سدھ ہوں گے۔ اس بیچ یہ بات بھی صحیح ہے کہ افغانستان کے بارے میں طالبان کے کریا کلاپوں کا نکاراتمک پربھاؤ پڑا ہے۔ طالبان کی بہت سی نیتوں کا کھیتری اور انتراشٹری استر پر विरोध किया गया है, जिसमें महिलाओं की शिक्षा पर पाबंदी सबसे ऊपर है। हालांकि अफगानिस्तान के एक राजनीतिक टीकाकार हुसैनी मजारी के अनुसार अफगानिस्तान इस समय जिन हालात से गुजर रहा है اس میں اسے اندیکھا نہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ راجنیتک اور مانویہ معاملوں میں انتر ہوتا ہے، اس دیش کی جنتا کو ہمیشہ راجنیتک حساب سے نقصان پہنچا ہے۔ اس سمے بھیشن ٹھنڈ میں افغانستان کے لوگوں کو بہت ادھک سہایتا کی ضرورت ہے، ایسے میں ان کے بارے میں راجنیتی کرنا اچت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ افغانستان کی بہت سی سمسیاؤں کا سمادھان اسی سمے سمبھو ہے جب اس دیش میں ہر ورگ کی سمیلتی سے ایک سرکار کا گٹھن کیا جائے جو بنا کسی بھید بھاؤ کے اپنا کام کرے۔ یہی مانگ انتراشٹریہ استر پر طالبان سے کی جاتی رہی ہے۔ ایران اور چین کے راشٹرپتیوں کی اور سے طالبان سے سمگر سرکار کے گٹھن کی مانگ کو اسی سندر میں دیکھا جا سکتا ہے۔
اور شوتاؤ، اب رخ کرتے ہیں ہم بھارت کا۔ بھارت نینتت کشمیر کی بھوتپورو مکھی منتری کا یہ آروپ ہے کہ کیندر سرکار کشمیر کے ساتھ سوتیلا ویوہار کر رہی ہے۔ سری نگر سے سپتے محمد حسن کی رپورٹ۔
جموں کشمیر کی بھوتپورو مکھی منتری اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے ادھیکش محبوبہ مفتی نے نئی دہلی کے موجودہ رجیم پر تابڑ توڑ حملے کرتے ہوئے کہا کہ یہ رجیم صرف اور صرف جھوٹ کے سہارے زندہ ہے۔ سری نگر میں سنواداتاؤں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے 3 ورشوں سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جموں کشمیر میں استھتی سامانیہ ہے، پرنتو زمینی استر پر کیا ہے یہ جموں کشمیر کے لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر جموں کشمیر میں استھتی سامانیہ ہے تو یہاں پر جس سنکھیا میں سرکشا بلوں کو نیوکت کیا گیا ہے ان میں کمی آنی چاہیے، پرنتو آئے دیوس اس میں بڑھوتری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کے حوالے سے کشمیر میں جو ابھیان آرمب کیا گیا ہے وہ لوگوں کے ورد ابھیان ہے اور اس کے بھی بہت ہی گمبھیر پرینام نکلیں گے۔ انہوں نے کہا،
دیکھیے جو ڈیمولیشن چل رہا ہے یہ غریبوں کے گھر اڑائے جا رہے ہیں، اور پہلی بار میں ایسی دیکھ رہی ہوں کوئی سرکار یہ ہے جو ایک غریب کو کہتی ہے کہ میں آپ کا گھر اڑا کے اسکول بناؤں گا، ہسپتال بناؤں گا، پارکس بناؤں گا۔ کبھی ایسا دیکھا ہے دنیا میں کہ کوئی سرکار غریبوں کا گھر اجاڑ کے اس کے بعد ہسپتال بناتی؟ ابھی آپ کے ہاں جو گاؤں میں ہسپتال ہیں کیا وہاں ڈاکٹر ہیں؟ کیا وہاں انفراسٹرکچر ہے؟ پہلے ان ہسپتالوں میں انفراسٹرکچر دو، ڈاکٹر دو، اس کے بعد نئے ہسپتال بناؤ۔ آپ کے پاس اتنی ساری زمین ہے، ابھی دیکھیے اگر ہمیں تو ہم تو سیکورٹی فورسز کے خلاف نہیں ہیں مگر لاکھوں کنال زمین ہماری سیکورٹی فورسز کے پاس ہے۔ جب یہ خود کہتے ہیں بی جے پی والے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہو سکتا ہے سیکورٹی فورسز کی تعداد کو کم کر کے وہ زمین وہاں سے لے کے وہاں اسکول بنائیں، وہاں ہسپتال بنائیں، تو غریبوں کو کیوں ستاتے ہیں؟ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ستانے والی بات ہے، ان کو تنگ کرنے والی بات ہے، ان کی معیشت پہ حملہ ہو رہا ہے، ان کو اتنا غریب بنانے کی بات ہے کہ وہ گھٹنوں پہ آ جائیں۔ اور جو ہمارا اصلی مسئلہ ہے، مسئلہ کشمیر، جس کی وجہ سے ہمارے قبرستان بھر گئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بچیاں بیوہ ہو گئی ہیں، ہمارے بچے یتیم ہو گئے ہیں، چاہتے ہیں کہ کشمیری وہ مسئلہ بھول کے یہ 5 کلو راشن کے پیچھے بھاگنا شروع کر۔ دیکھیے دیکھنا ہے نا، ہم نے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو بھی ہماری جب سرکار بنے گی بی جے پی کی تو کہہ رہے تھے کہ ہم ہر غریب کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ روپے دیں گے، اور کہہ رہے تھے کہ ہر سال 2 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ تو کیا انہوں نے کوئی انہوں نے تو نوکریاں چھڑا لی لوگوں سے، انہوں نے تو لوگوں کا پیسہ جو تھا وہ غائب کر کے اڈوانی کو دے دیا۔
اس بیچ ایک بار پھر دھارمک گٹھوں کے گٹھ بندھن متحدہ مجلس علماء نے راجیہ پرشاسن یعنی ایل جی پرشاسن پر یہ آہوان کیا ہے کہ وہ جموں کشمیر کے میروائز عمر فاروق کی نظر بندی سماپت کریں اور انہیں اپنی دھارمک ذمہ داریاں نبھانے کی انومتی دی جائے۔ اپنے ایک وکتویہ میں انہوں نے کہا کہ سری نگر کی اتہاسک جامع مسجد پچھلے 3 ورشوں سے ان کے انتظار میں ہے، پرنتو انہیں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے جو مانو ادھیکار کا الگھن ہے اور دھارمک معاملات میں بھی یہ مداخلت ہے۔ متحدہ مجلس علماء نے ایل جی پرشاسن پر بل دیا کہ وہ فوری طور پر ان کی نظر بندی ختم کریں۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
इसी के साथ राजनीतिक चर्चा का दैनिक कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
श्रोताओं, अब प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम।
दोस्तों, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैगंबरी की घोषणा के शुभ अवसर पर विशेष कार्यक्रम के साथ आपकी सेवा में उपस्थित है मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, अब्रहा ने खाने काबा को खराब करने के लिए जो हमला किया था उसके 40 वर्ष बीत चुके थे। उस हमले में अब्रहा और उसके सैनिक हाथियों पर सवार होकर आए थे, परंतु महान ईश्वर के आदेश से अबाबील नाम के पक्षियों के झुंड ने अपनी चोंच में कंकरियों से हमला कर दिया और अब्रहा का लगभग समस्त लश्कर तबाह हो गया। इस घटना को महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में भी बयान किया है और फील नाम का पवित्र कुरान का एक सूरा भी है।
दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महान ईश्वर के अंतिम और सबसे अफजल पैगंबर हैं। रिवायत में है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर रात को सोने व विश्राम करने के बाद गारे हिरा अर्थात हिरा नामक गुफा की ओर चले गए। उस समय ठंडी हवा चल रही थी, लगभग आधी रात हो गई थी। हजरत मोहम्मद ने आसमान की ओर सिर उठाया, उजाली रात थी, आसमान में चांद अपने प्रकाश को बिखेर रहा था। हिरा पर्वत भी चांदनी रात में चमक रहा था, परंतु पवित्र नगर मक्का और उसके आसपास के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अजीब सन्नाटा छाया हुआ था, मानो जमीन आसमान और ब्रह्मांड का कण कण सो गया था।
दोस्तों, उस रात से पहले भी पैगम्बर इस्लाम ने रात जाकर गुजारा था, मगर उस प्रकाश के सन्नाटे का एहसास व अनुभव कभी भी नहीं किया था। कुछ ही समय पश्चात आसमान से एक प्रकाश चमका और उसने हजरत मोहम्मद के पूरे अस्तित्व को प्रकाशित कर दिया। उस वक्त पैगम्बर इस्लाम ने अपने पावन अस्तित्व में एक अलग ही चीज का आभास किया। महान ईश्वर के विशेष व करीबी फरिश्ते हजरत जिब्राइल प्रकट हुए और कहा, हे मोहम्मद, अपने पालनहार के नाम से पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया है और कलम के माध्यम से सिखाया और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था।
दोस्तों, ये वो समय था मानो हीरा पर्वत और समस्त पत्थर की चट्टानें भी बात करने लगी थीं और सब पैगंबर इस्लाम को ईश्वरीय दूत कहकर सलाम कर रही थीं। 27 रजब की तारीख थी, पैगंबर इस्लाम पर ईश्वरीय संदेश उतरने का क्रम आरंभ हो गया। ये वो समय था जब पैगंबर इस्लाम 40 साल के हो गए थे। पैगंबर इस्लाम को मानवता के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी उस समय दी गई जब पूरे अरब समाज में अनैतिकता व्याप्त थी। लोग अपनी लड़कियों को जिंदा जमीन में गाड़ने पर गर्व करते थे। सूद खाना, शराब पीना, कबीलावाद पर गर्व करना, भेदभाव, मूर्ति पूजा जैसे विभिन्न प्रकार की बुराइयां आम थीं। परंतु महान ईश्वर के आदेश से पैगम्बर इस्लाम ने लोगों का पथ प्रदर्शन आरंभ किया। उनका पथ प्रदर्शन रात के अंधेरे से सूरज निकलने के समान था। जिस तरह जितना सूरज निकलता जाता है और उसकी किरणें दुनिया में पड़ती है, फैलती जाती है, उसी हिसाब से अंधकार मिटता जाता है। ठीक उसी तरह जैसे जैसे पैगंबर इस्लाम के मार्गदर्शन का प्रकाश फैलता जा रहा था, लोग अज्ञानता के अंधकार से बाहर निकलते जा रहे थे। और 1443 साल पहले अरब प्रायद्वीप में पहले मार्गदर्शक के जिस सूरज का उदय हुआ था, उसकी किरणें आज भी लोगों को अज्ञानता के अंधकार से निकाल रही हैं, और प्रलय तक ये सिलसिला जारी रहेगा।
पैगम्बर इस्लाम के काल में अरबों की जो हालत थी, हजरत अली अलैहिस्सलाम उसे इस प्रकार बयान करते हैं। ईश्वर ने पैगम्बर इस्लाम को उस वक्त भेजा जब लोग गुमराही की घाटी में भटक रहे थे, आंख बंद करके गलत चीजों का अनुसरण करते थे। उनकी गलत इच्छाओं ने उनकी बुद्धि का अपहरण कर लिया था और अहंकार ने उन्हें गुमराह कर रखा था और अज्ञानता ने उन्हें महत्वहीन बना रखा था। इस प्रकार की हालत में ईश्वर ने पैगम्बर इस्लाम को शुभ चिंतक बनाकर भेजा और पैगम्बर इस्लाम ने उन्हें अच्छी बातों की तरफ आमंत्रित किया।
पैगम्बर इस्लाम ने अपने पथ प्रदर्शन का आधार पवित्र कुरान की शिक्षाओं को करार दिया था। पवित्र कुरान ईश्वरीय शिक्षाओं का वो अथाह सागर है जो कभी भी नहीं सूखेगा। पवित्र कुरान ने लोगों को महान ईश्वर की उपासना करने का आदेश दिया, लोगों को मूर्तियों की पूजा करने से मना किया। पवित्र कुरान की एक शिक्षा शराब न पीना है। शराब पीने के कितने अधिक नुकसान हैं, ये बात इतनी स्पष्ट है कि इसे बयान करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही संक्षेप में ये बताना चाहते हैं कि शराब पीने से न केवल इंसान के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बल्कि इंसान की बुद्धि पर भी उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अधिक या जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत होती रहती है। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से समाजों व देशों में शराब पीना मना है, परंतु शराब की बिक्री का लाइसेंस वहाँ की सरकारें देती हैं और शराब पीने वाले बड़े से बड़े अपराध अंजाम देते हैं।
दोस्तों, पैगम्बर इस्लाम समस्त सदगुणों की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की उपासना करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने लोगों को महान ईश्वर का शरीक करार देने से मना किया और कहा, कोई भी ईश्वर का शरीक व सहभागी नहीं है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि पैगम्बर इस्लाम ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा एक ईश्वरवाद पर इतना अधिक क्यों बल दिया। उसका एक जवाब यह है कि एक ईश्वरवाद समस्त अच्छाइयों का स्रोत और मुक्ति का मूल मंत्र है। जो इंसान महान ईश्वर को मानता है, उसे प्रलय के दिन पर विश्वास होता है और वो ये मानता है कि महान ईश्वर उसके समस्त कर्मों को देख रहा है, तो महान ईश्वर को मानने वाले और न मानने वाले व्यक्ति के अमल और दिनचर्या में बहुत अंतर होता है।
अरब में महान ईश्वर को न मानने वाले लोगों का बोलबाला था। महान ईश्वर ने ऐसे अज्ञानी, नास्तिक और अनेक ईश्वरवादी लोगों के मध्य पैगंबर इस्लाम को भेजकर लोगों पर वो एहसान किया जिसकी कल्पना भी लोग नहीं कर सकते। यही नहीं, महान ईश्वर ने पैगंबर इस्लाम को भेजकर समस्त इंसानों और पूरी मानवता पर एहसान किया और पैगंबर इस्लाम ने लोगों को गुमराही और अज्ञानता के अंधकार से निकालने के लिए अनगिनत कठिनाइयां सहन की।
महान ईश्वर की ओर से पैगंबर इस्लाम को भेजे जाने का एक उद्देश्य मानवता को चरम शिखर पर पहुँचाना है। खुद पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, मुझे नैतिकता को शिखर पर पहुँचाने के लिए भेजा गया है। यहाँ एक गूढ़ व रोचक बिंदु की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है और वो यह है कि महान ईश्वर ने जब पैगंबर इस्लाम को मानवता के मार्गदर्शन और मानवता को नैतिकता के शिखर पर पहुंचाने के लिए भेजा है, तो स्वाभाविक है जिसे मानवता को शिखर पर पहुंचाने के लिए भेजा गया है उसे स्वयं नैतिकता के शिखर पर होना चाहिए, क्योंकि अगर वही नैतिकता के शिखर पर नहीं होगा तो दूसरों को नैतिकता के शिखर पर कैसे पहुंचाएगा। महान ईश्वर पवित्र कुरान में कहता है, हे पैगंबर, बेशक आप नैतिकता के शिखर पर हैं, यानी महान ईश्वर इस बात की गवाही दे रहा है कि पैगंबर इस्लाम नैतिकता के शिखर पर हैं।
महान व सर्वसमर्थ ईश्वर ने पैगंबर इस्लाम को समस्त विश्ववासियों के लिए रहमत, दया व कृपा बनाकर भेजा था। पैगंबर इस्लाम सबके लिए रहमत थे। ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमानों के लिए रहमत थे, बल्कि वो समूचे विश्ववासियों के लिए रहमत थे। पैगंबर इस्लाम गैर इंसानों के लिए भी रहमत थे। महान ईश्वर ने पवित्र कुरान में कहा है कि हमने आपको नहीं भेजा है मगर एक ही समूचे विश्व के लिए रहमत। महान ईश्वर ने कहीं भी यही नहीं कहा है कि हमने पैगंबर इस्लाम को केवल इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, विश्व में गैर इंसान भी रहते हैं।
पैगंबर इस्लाम का शालीन व्यवहार, उनकी शिक्षाएं और उनका निमंत्रण वास्तव में समस्त इंसानों की अंतरात्मा की आवाज है और ये इस्लाम धर्म के तेजी से प्रचार प्रसार की बहुत बड़ी वजह है। ये पैगंबर इस्लाम और उनके पवित्र परिजनों का नम्र व सुशील व्यवहार था जिसकी वजह से ईश्वरीय धर्म इस्लाम फैलता चला गया। सारांश ये कि आज मानवाधिकार, महिलाधिकार और आज़ादी जैसे विषयों की जो बात की जाती है वो सब पैगंबर इस्लाम द्वारा लाई गई शिक्षाओं का सुपरिणाम है।
तो दोस्तों, न्याय, प्रेम और शांति के ईश्वरीय दूत की पैगंबरी की घोषणा के शुभ अवसर पर एक बार फिर आप सबकी सेवा में हार्दिक बधाई प्रस्तुत करते हैं।
अनवारे मोहम्मद से ता अर्श को जाला है। आलम है महबूब निराला है,
रहमत आलम है महबूब निराला है।
ऐसा तो बशर हमने देखा है नभाला है,
ऐसा तो बशर हमने देखा है नभाला है।
बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है,
बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है,
बेहतर से भी बेहतर है, आला से भी आला है।
खुद नूर के साँचे में, खुद नूर के साँचे में अल्लाह निकाला है।
श्रोताओं, ये प्रसारण आप रेडियो तहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। अब प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम पत्र संसार।
पत्र संसार। दोस्तों, कार्यक्रम पत्र संसार में आपका स्वागत है। अपनी दीदी मरियम मेहर दादी
और भैया अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, हमें आशा है कि आप जहां कहीं भी होंगे सकुशल होंगे और अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार होंगे।
और आज भी आपके ईमेल और आपके कमेंट्स आपके विचार कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। दीदी हमेशा ईमेल से शुरू करती हैं, देखते हैं कि क्या किसका ईमेल चुना है इस सप्ताह के कार्यक्रम के लिए दीदी ने।
वैसे भैया, आजकल हमारा वो रेडियो प्रोग्राम था, रेडियो दिवस था, वो अभी खत्म हो गया है और उसके बारे में दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल से विधान चंद्र सान्याल ने अपने रेडियो दिवस के संबंध में कुछ शब्द और कुछ यादें लिख भेजे हैं
जी।
लिखते हैं, वायरलेस संचार के साधनों में से एक वायरलेस या रेडियो है। सबसे पुराना, सबसे सुलभ और शक्तिशाली मीडिया के रूप में वायरलेस दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाला उपकरण। तकनीकी बदौलत आज हमें विभिन्न माध्यमों से समाचार, मनोरंजन और सूचना बड़ी आसानी से मिल जाती है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस है और यानी मनाया गया है। 2010 में स्पेनिश रेडियो अकादमी के प्रस्ताव पर 2011 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 36वें वार्षिक सम्मेलन में इस दिन की घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना 13 फरवरी 1946 को हुई थी, इसलिए इस दिन को विश्व रेडियो दिवस के रूप में चुना जाता है। मैं एक बार बांग्लादेश के नागा जिले में गया था, लेकिन इत्तेफाक से वर्ल्ड रेडियो डे बीच में पड़ जाता है। उस कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया गया था। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आज मेरी आंखों के सामने बांग्लादेशी श्रोताओं के उन्माद की तस्वीर तैर रही है। उपहारों और प्रेम से मेरे मन को गहराई से द्रवित कर दिया है। बांग्लादेश रेडियो स्टेशन भी कई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सूचना मंत्री का अभिवादन, समाचार पत्रों में विशेष लेख और दर्शकों का उन्माद विश्व रेडियो दिवस मनाने के महत्व को दर्शाता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि विश्व शांति स्थापित करने में रेडियो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। केवल सहयोग, पहल और प्रयास का उपयोग किया जाना चाहिए। अंत में, विश्व रेडियो दिवस पर मैं सभी रेडियो प्रेमियों, संगठनों के अधिकारियों, रेडियो कर्मियों और श्रोताओं को अपना प्यार और शुभकामनाएं देता हूं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे विचार प्रस्तुत किए और अपनी पुरानी यादों को पेश किया। वो भी सुंदर यादें हैं और साथ ही मार्मिक भी लगी। तो धन्यवाद आपका कि आप रेडियो के बारे में, रेडियो के महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में इस तरह सोचते हैं। रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा जो एक कई दशकों तक, एक बहुत लंबे समय तक इसने पूरे समाज की सेवा की। और जैसा कि ईमेल में बताया गया, सूचनाएं, मनोरंजन और खबरें, ये सारी चीज़ें इसके माध्यम से लोगों तक पहुंची। एक लंबा समय इस तरह से गुजरा और आज भी रेडियो अपनी जगह पे बना हुआ है। अलबत्ता अब तकनीक डेवलप हो जाने की वजह से रेडियो के भी हाथ खुल गए हैं और रेडियो संस्थान और रेडियो स्टेशन अपने कार्यक्रम अलग अलग रूपों में प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल आवाज़ तक सीमित नहीं है बल्कि दूसरे विजुअल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक्स्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सिलसिला जारी है। इस बीच आशा यह है कि इनका इस्तेमाल सही लक्ष्यों के लिए सही दिशा में हो। और श्रोताओ, अब बारी है संस्कृति से जुड़ी खबर की। ये हिस्सा भी कार्यक्रम पत्र संसार में हमेशा बड़ा दिलचस्प रहता है। देखते हैं कि दीदी ने क्या खबर चुनी है इस सप्ताह के लिए।
जी, आज हम यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 44वीं बैठक में जा रहे हैं। इस बैठक के दौरान हवारमन ओरामनत के सांस्कृतिक परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। हवारमन या ओरामनत एक हद तक ऐतिहासिक सांस्कृतिक परिदृश्य है जो ईरान के केरमानशाह और कुर्दिस्तान प्रांतों में स्थित है। संपत्ति की विशेषता इसकी स्तरीय वास्तुकला और योजना है। इसमें कुर्दिस्तान में सर्वाबाद, सनंदज और कामयारान शहरों के कुछ हिस्से और केरमानशाह में रावणसर, पावे, जावनरूद और सालास बाबाजाने शामिल हैं। जावनरूद, उरामन तख्त और लाहौन घाटियां भी इसी भूदृश्य में स्थित हैं। हवारमन उरामन के सांस्कृतिक परिदृश्य में लगभग 409,000 हेक्टेयर क्षेत्र शामिल है, जिसमें से 106,000 हेक्टेयर क्षेत्र से संबंधित हैं और 303,000 हेक्टेयर को सही मार्ग माना जाता है। यूनेस्को ने इस ऐतिहासिक प्राकृतिक स्थल के चयन के लिए 2 मुख्य मानदंड निर्धारित किए हैं। इन मानदंडों में से एक उस सांस्कृतिक परंपरा या सभ्यता के लिए असाधारण साक्ष्य प्रदान करना है जो क्षेत्र में रहती थी या अब भी जीवित है और अब विलुप्त हो चुकी है। और दूसरी मानव निवास का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। एक संस्कृति या संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए भूमि या समुद्र का पारंपरिक उपयोग या एक ऐसे वातावरण के साथ मानव संपर्क को प्रतिबिंबित करना है जो मौलिक परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हो गया है।
दीदी बड़ी अच्छी खबर आपने सुनाई, धन्यवाद। और श्रोता बारी है आपके कमेंट्स की, जो आपने अलग अलग खबरों पे या दूसरे कार्यक्रमों या सामग्रियों पर किए हैं। जी दीदी
जी, मानवीय सहायता भेजने वाले देशों पर दबाव डाल रहा है अमेरिका, बशार असद। इस पर आनंद कुमार लिखते हैं, जियो माफिया द्वारा गुलाम बनाए गए पश्चिमी देश आतंकवादी गिरोहों के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 2011 से कई बच्चों सहित सैकड़ों हजारों सीरियाई नागरिकों की बेरहमी से हत्या की है। लेकिन यूरोप और अमेरिका कई देशों को गरीब सीरिया की मदद करने की अनुमति नहीं देते हैं। ईरान और रूस अच्छे लोग हैं, ईमानदार हैं, गरिमापूर्ण हैं, दयालु हैं, बहादुर लोग हैं। ईरान, चीन, रूस इतिहास के दाईं ओर हैं। मुझे उम्मीद है कि भगवान सीरियाई लोगों की मदद करेंगे। मैं कुछ सीरियाई लोगों को जानता हूं, वे वास्तव में अच्छे और ईमानदार लोग हैं।
सीरिया की जनता इस समय गंभीर कठिनाइयों में है और तुर्किया में तो और बड़ी तबाही आई है, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है और बड़ा नुकसान हुआ है। इन भूकंप पीड़ितों को शदीद ज़रूरत है मानवीय सहायता की और मानवीय सहायता पहुंचाई जा रही है। इस बीच अमेरिका और पश्चिमी देशों की तरफ से विशेष रूप से सीरिया के सिलसिले में जो रवैया अपनाया गया वो अमानवीय था, सहायता को रोकने की कोशिश की गई। हिजबुल्ला और अलबत्ता बाद में अमेरिका ने दबाव पड़ने पर और जब इस पर एक बहसें शुरू हो गई तो कुछ रास्ता खोला है और सहायता भेजी है, लेकिन हिजबुल्ला लिबनान की तरफ से एक बड़ा महत्वपूर्ण बयान आया कि अमेरिका ने जितनी सहायता भेजी है सीरियाई भूकंप पीड़ितों की वो रोज़ाना जो तेल चोरी कर रहा है अमेरिका कुर्द, वहाँ कुर्द फोर्स के मदद से, वो एक दिन की चोरी के बराबर है। तो अमेरिका के लिए एक तो सबसे पहली बात यह है कि सीरियाई जनता का जो दैरुजूर के इलाके में तेल के जो भंडार हैं उस पर उसने नियंत्रण कर रखा है, उसका फ़ायदा, उसका रेवेन्यू सीरियाई जनता को नहीं मिल पा रहा है। अमेरिका को चाहिए कि सबसे पहले तो ये रुकावट जो उसने खड़ी कर रखी है उसको ख़त्म करे ताकि सीरियाई जनता और सीरिया के देश वहाँ के लोग इस कठिन घड़ी में अपने इस भंडार से फ़ायदा उठा सकें। और अब बारी है श्रोताओं के विचार की, हम किसी एक श्रोता के विचार सुनते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। तो दीदी ऐलान करेंगी कि इस सप्ताह के लिए हमारे किस श्रोता के मूल्यवान विचार कार्यक्रम में शामिल किए जा रहे हैं।
जी, ये भी हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, उड़ीसा से सुब्रत कुमार पति। इन्होंने रेडियो फेस्टिवल के बारे में कुछ बातें कही हैं।
जी,
पत्र संसार सुनने वाले सारे श्रोताओं को मेरा नमस्कार और इसको प्रस्तुत कर रहे भाई और बहन को भी हमारा नमस्कार। मेरा नाम सुब्रत कुमार पति है, मैं भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। शायद मेरे श्रोता मित्रों को पता होगा मेरे बारे में, या मैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ शायद इसके बारे में आप लोगों को पता होगा। ये इवेंट है आउटरीच इंटरनेशनल रेडियो फेयर, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो मेला, जो कि हर साल भुवनेश्वर में होता है। भुवनेश्वर में होने वाले इस मेले में रेडियो तेहरान समेत बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रसारण, देश के ऑल इंडिया रेडियो के अलावा काफी सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशन, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ये सारे लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। नए और पुराने रेडियो सेट का एक बड़ा एग्जीबिशन यहाँ पर लगता है। ग्रामफोन रिकॉर्ड का भी एग्जीबिशन लगता है। रेडियो से जुड़े हुए नए और पुराने तकनीकी सामग्री भी यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। हमारे देश में और कहीं भी रेडियो मेला नहीं होता। भारत का यह एक ही मात्र रेडियो मेला है जो विश्व रेडियो दिवस पर हर साल आयोजित होता है। पिछले सालों में अगर हम देखें तो देश के सभी राज्यों से यहाँ पर श्रोता आते हैं, पश्चिम बंगाल कहें, उत्तर प्रदेश कहें, बिहार कहें, झारखंड कहें या फिर छत्तीसगढ़ कहें। मित्रों, आप सभी से मिलने की बड़ी ख्वाहिश है। हम रेडियो के द्वारा, पत्रों के द्वारा लंबे अरसों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सीधा मिलना, रूबरू होना, बात करना, इसका मजा अलग है। और अवसर अगर विश्व रेडियो दिवस और रेडियो मेला हो तो क्या कहना। आप रेडियो तेहरान के स्टॉल में भी आ सकते हैं और रेडियो तेहरान के जो मित्र हैं, जो प्रसारक मित्र हैं, रिपोर्टर हैं, उनसे भी बात कर सकते हैं। रेडियो के बारे में जानने के लिए, रेडियो के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए रेडियो श्रोताओं की ये सबसे बड़ी गेट टुगेदर है हमारे देश का। तो आप सबों से मिलने की ख्वाहिश रखते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।
तो ये थे उड़ीसा से हमारे बहुत ही अच्छे श्रोता सुब्रत कुमार पति,
और बड़े मूल्यवान विचार इन्होंने
रेडियो के बारे में बताया।
दीदी, हम थोड़ी सी बात, जरा सा समय है, कुछ सेकंड की बात, हम ईद बेसत के बारे में बात करते हैं। ईद बेसत, बेसत की ईद, बेसत वो दिन है जब पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि उन्हें पैगंबर बना के भेजा गया है। और ये पूरे मानव इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ है और पूरी मानवता के इतिहास के लिए ये एक अहम अध्याय है जो यहाँ से शुरू हुआ और जिसके बाद इस्लाम के रूप में बहुत बड़ा उपहार मानव समाज को मिला। दीदी, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, तो श्रोताओं से अनुमति ले लेते हैं। तो श्रोताओं, अगली मुलाकात तक भैया अहमद अब्बास और दीदी मरियम मेहरदादी को अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।
श्रोताओ, ये प्रसारण आप रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। ताज़ा विस्तार और ताज़ा खबरों के लिए हमारी वेबसाइट देखते रहिए, पता है parstoday.ir/hi। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।